शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। वसुदेवसुतं देवं कंसचारुणमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। भगवान ने गीता में अनेक श्लोकों में कर्म करने की विधि के बारे में बताया, कर्म तत्व के बारे में बताया, उसके विषय में हम थोड़ा चिंतन करते हैं। महाभारत के युद्ध के लिए कौरव और पांडवों की सेनाएं कुरुक्षेत्र के मैदान में पूरी तरह से तैयार खड़ी थी। युद्ध का शंखनाद हो चुका था, तभी अचानक अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण से कहा कि हे अच्युत, मेरे रथ को दोनों सेनाओं के बीच में खड़ा कर दीजिए, ताकि युद्ध क्षेत्र में डटे हुए युद्ध के अभिलाषी इन विपक्षी योद्धाओं को मैं भली भांति देख सकूँ और मुझे किन किन के साथ युद्ध करना है ये मैं जान सकूँ। तब भगवान श्री कृष्ण, जो कि अर्जुन के सारथी थे, रथ को दोनों सेनाओं के मध्य में भीष्म और द्रोणाचार्य के सामने खड़ा कर दिया। कौरवों की सेना में जब अर्जुन ने अपने सगे संबंधियों को देखा, तब उसे बहुत ही शोक हो गया और मोह के कारण अर्जुन ने भगवान से कहा कि मैं युद्ध नहीं करूँगा। अर्थात अपने नियत कर्म से अर्जुन उस समय पीछे हटने लगा, जिसके कारण भगवान ने गीता का उपदेश अर्जुन के मोह को दूर करके कर्म करने के लिए दिया। हम विचार करें कि यदि भगवान अर्जुन के रथ को दुर्योधन और दुशासन के ठीक सामने खड़ा कर देते तो हो सकता था अर्जुन को मोह ना होता और भगवान के उपदेश से हम सब भी वंचित रह जाते। अतः प्रत्येक कर्मफल के पीछे ईश्वर का कोई विधान या हेतु ही छुपा रहता है, जिसको उस समय हम नहीं जान पाते। पूरी गीता के उपदेश को सुनने के पश्चात अर्जुन ने गीता के 18वें अध्याय के 73वें श्लोक में कहा कि हे अच्युत, आपकी कृपा से मेरा मोह नष्ट हो गया और मैंने स्मृति प्राप्त कर ली है। अब मैं संशय रहित होकर स्थित हूँ, अतः आपकी आज्ञा का पालन करूँगा। शुरू में गीता के दूसरे अध्याय के 7वें श्लोक में अर्जुन कहता है कि कायरता रूप दोष से उपत हुए स्वभाव वाला तथा धर्म के विषय में मोहित चित्त हुआ अर्जुन भगवान से पूछता है कि जो साधन निश्चित कल्याणकारक हो वह मेरे लिए कहिए, क्योंकि मैं आपका शिष्य हूँ, इसलिए आपके शरण हुए मुझे आप शिक्षा दीजिए। अतः अर्जुन के शरणागति होने के पश्चात ही अर्जुन ने उसे गीता का उपदेश दिया, जिससे अर्जुन का सारा मोह दूर हो गया और फिर उसने पूरे युद्ध में भगवान की आज्ञानुसार ही युद्ध किया, अर्थात अपना कर्तव्य कर्म किया। भगवान ने सांख्य योग, भक्ति योग और कर्मयोग के विषय में अर्जुन को गीता के अनेकों श्लोकों द्वारा उपदेश दिया। भगवान ने उपदेश की उपसंहार में, अर्थात गीता के अंतिम अध्याय 18वें अध्याय के श्लोक 56, 57, 58 में कर्म करने की विधि के विषय में फिर से अर्जुन को बताया, क्योंकि भगवान के उपदेश का मुख्य प्रयोजन तो अर्जुन को कर्म में लगाना था, जिससे वो मोह के कारण भागना चाह रहा था। भगवान ने इन श्लोकों में कहा कि सब कर्मों को मन से मुझ में अर्पण करके तथा सम्बुद्धि रूप योग को अवलंबन करके मेरे परायण और मुझ में चित्त वाला हो। तो भगवान ने कहा, जो भी तू कर्म करता है उसके सबको मुझे अर्पण कर दे और समबुद्धि रूप योग, समत योग उच्चते, जिसमें कहते हैं भगवान समता में स्थित हो, उस योग को अवलंबन करके मेरे परायण हो और मुझ में चित्त वाला हो। यही बात भगवान ने गीता के 9वें अध्याय में भी कहा कि जो भी तू कर्म करता है, भगवान ने 9वें अध्याय में अर्जुन से कहा है, यत करोसि यद नासी, हे अर्जुन, जो तू कर्म करता है, जो खाता है, जो हवन करता है, जो दान देता है, जो तप करता है, वो सब मेरे अर्पण करते हैं। तो भगवान को अर्पण बुद्धि से हम कर्म करते हैं तो उसमें हमारी आसक्ति नहीं रहती, ममता नहीं रहती, फल में हमारी इच्छा नहीं होती, क्योंकि हम भगवान को अर्पण बुद्धि से उस काम को कर रहे हैं। यही बात भगवान ने गीता के 4वें अध्याय के 23वें श्लोक में कहा, गत संगस्य मुक्तस्य ज्ञानावश्य चेतसा यज्ञ चर्ता कर्म समग्रम प्रवेलिते। इसमें कहा गत संगत से जिसकी आसक्ति नष्ट हो गई है, जो देहाभिमान और ममता से रहित हो गया है, ज्ञानावस्थित चेतसा, जिसका चित्त निरंतर परमात्मा के ज्ञान में स्थित हो गया। एक बार परमात्मा ज्ञान हो जा तो निरंतर उसका ज्ञान रहता है, फिर वो ज्ञान दूर नहीं होता। ऐसा केवल यज्ञ संपादन के लिए, मतलब निष्काम भाव से कर्म करता हुआ, दूसरों के कल्याण कर्म करता हुआ मनुष्य के संपूर्ण कर्म विलीन हो जाते। कर्म समग्रम प्रवेश लेती, संपूर्ण कर्म, उसके संचित कर्म, प्रारब्ध कर्म और क्रियमान कर्म, जो भी उसके कर्म है, समग्र कर्म, संपूर्ण कर्म विलीन हो जाते हैं। ये बात भगवान ने गीता के केवल इसी श्लोक में संपूर्ण कर्म विलीन होने की बात बताई है। तो भगवान कहते हैं कि इस तरह जब ज्ञानावस्थित चेतसा तू मुझ में, अपना चित्त मुझ में निरंतर परमात्मा ज्ञान में रखेगा, तो इससे तू मेरी कृपा से समस्त संकटों को अनायास ही पार कर जाएगा। और यदि अहंकार के कारण मेरे वचनों को नहीं सुनेगा तो नष्ट हो जाएगा, अर्थात परमार्थ से भ्रष्ट हो जाएगा। मेरे परायण हुआ कर्मयोगी तो संपूर्ण कर्मों को सदा करता हुआ भी मेरी कृपा से सनातन अविनाशी परम पद को प्राप्त हो जाता है। तो भगवान ने इन श्लोकों में कर्म करने की विधि, जिसके द्वारा कर्म करते हुए मनुष्य उस अविनाशी परम पद को प्राप्त कर सकता है जिसके लिए उसने मनुष्य जन्म लिया है, और यही उसका मुख्य उद्देश्य भी है कि मैं उस परम पद को प्राप्त कर सकूं, मैं अपने आप को जान सकूं कि मैं जीव अज्ञान उपाधि की वजह से जीव बना हुआ हूं, प्रकृति के साथ अपना संबंध बनाने के लिए मैं जीवात्मा हूं, अदरवाइज तो ईश्वरन से जीव अविनाशी, ममे मांसो जीव लोके जीव भूता सनातना, मैं तो उस परम पता परमात्मा ब्रह्म का अंश हूं। तो यह हमारे जीवन का एक उद्देश्य है। तो यहाँ भगवान ने हमें चार बातों को ध्यान में रखते हुए कर्म करने के विषय में बताया। पहला कहते हैं प्रत्येक कर्म को मन से भगवान में अर्पण करते हुए करना चाहिए। मनुष्य कर्म दो प्रकार से करता है, सकाम भाव से अर्थात कामना आसक्ति फल की इच्छा रखते हुए, अर्थात स्वार्थ बुद्धि के साथ करता है, जिसके कारण वो कर्म बंधन में पड़ जाता है और बार बार जन्म मृत्यु के चक्कर में पड़ा रहता है। पुण्य कर्म से उच्च लोक में जाकर पुनर्जन्म लेता है और बुरे कर्म के कारण पशु पक्षी योनियों में जन्म लेता है, और पुण्य पाप अगर मिश्रित हो तो ऐसे कर्म के द्वारा पुनः मनुष्य योनि में जन्म लेता है, उसका जन्म मरण से छुटकारा नहीं हो पाता। ये है जो हम सकाम भाव से कर्म करते हैं, कामना रखते हुए, इच्छा रखते हुए, आसक्ति के साथ, फल की इच्छा हमारे अंदर है, तो जो सकाम भाव से कर्म करते हैं उसके वजह से हम बार बार जन्म मरण के में पड़े रहते हैं। दूसरा है निष्काम भाव के साथ कर्म करना, अर्थात कोई कामना आसक्ति फल की इच्छा न रखते हुए निर्लिप्त भाव से लोक हित की दृष्टि से ईश्वर को अर्पण करते हुए, अर्थात ये मानकर कि ईश्वर के द्वारा दिए गए कार्य को उनकी आज्ञा से, मतलब शास्त्रानुसार जो भगवान ने शास्त्र में गीता में कहा है, जिस परमेश्वर से संपूर्ण प्राणियों की उत्पत्ति हुई है और जिससे ये समस्त जगत व्याप्त है, उस परमेश्वर की अपने स्वाभाविक कर्मों द्वारा मैं पूजा कर रहा हूँ, ये हमारे दृष्टिकोण होना चाहिए। तो हम उस कर्म बंधन में नहीं पड़ते कि मैं तो केवल निमित्त मात्र हूँ, भगवान के द्वारा दी गई शक्ति के द्वारा ही ये कर्म कर रहा हूँ, वही इसे करा रहे हैं। तो जब हमारा इस प्रकार के विचार होंगे अंतःकरण में, हमारा ऐसा भाव होगा, तो हम उस कर्म बंधन से, कर्म करते हुए कर्म के बंधन से मुक्त हो जाते हैं, और कर्म के बंधन से मुक्त हो जाते हैं और जब निष्काम भाव से आसक्ति रहित होकर करते हैं तो भगवान ने कहा कर्म समग्र पर भी लेते, संपूर्ण कर्म विलीन हो जाते हैं। और मनुष्य के जब संपूर्ण कर्म विलीन हो जाते हैं, उसके अब तक के जो संचित कर्म वो भी समाप्त हो जाते हैं, तब वो जन्म मृत्यु से रहित हो जाता है। जैसे भुने हुए बीज यदि बो दिए जाएं तब वे दोबारा फलित नहीं होते, इसी प्रकार मनुष्य को ज्ञान हो जाने के पश्चात उसके कर्म भी ज्ञान अग्नि में भस्म होकर उस मनुष्य की मुक्ति का कारण बन जाते हैं और उसे कर्मफल भोगने के लिए पुनर्जन्म नहीं लेना पड़ता। तो ये भगवान ने गीता के चौथे अध्याय के 41 श्लोक भगवान कहा है, कहते हैं कि जिसने कर्मयोग की विधि से समस्त कर्मों को परमात्मा में अर्पण कर दिया है और जिसने विवेक द्वारा समस्त संशयों का नाश कर दिया है, ऐसे वश में किए हुए अंतःकरण वाले पुरुष को कर्म नहीं बांधते, कर्म बंधन से मुक्त रहता है, कर्म करते हुए कर्म बंधन से मुक्त रहता है। फिर कहते हैं पांचवें अध्याय के 10वें श्लोक में कहते हैं, जो पुरुष सब कर्मों को परमात्मा में अर्पण करके और आसक्ति को त्याग कर कर्म करता है, वह पुरुष जल से कमल के पत्ते की भांति पाप से लिप्त नहीं होता। जैसे कमल का पत्ता जल में रहते हुए वो लिप्त नहीं होता, उसी तरह से वो भी पाप से लिप्त नहीं होता। अतः हमें अपने सभी कर्म ईश्वर अपना बुद्धि के साथ पूर्ण निर्लिप्त भाव से शास्त्रानुसार ही करने चाहिए। दूसरा भगवान बताते हैं गीता में कि समबुद्धि रूप योग, समबुद्धि रूप कि समता रखते हुए बुद्धि में समभाव रखते हुए, सिद्धि असिद्धि जय पराजय इन सब में समभाव रखते हुए लाभ हानि, तो इसको कहते हैं समबुद्धि रूप योग को अवलंबन करके कर्म करना चाहिए। तो भगवान ने गीता में समता को बहुत महत्व दिया है। सबसे पहले तो भगवान ने गीता के अध्याय 2 की 48वें श्लोक में कहा है, तू आसक्ति को त्याग कर, सिद्धि असिद्धि में समान बुद्धि वाला योग में स्थित हुआ कर्तव्य कर्म को कर, समत ही योग कहलाता है, समत्व योग उच्यते। और 50वें श्लोक में अध्याय 2 में श्लोक में भगवान कहते हैं समबुद्धि युक्त पुरुष पुण्य और पाप दोनों को इसी लोक में त्याग देता है, अर्थात उनसे मुक्त हो जाता है। तो जब न पुण्य रहा न पाप रहा, दोनों से अगर मुक्त हो जाता है तो कर्म बंधन से मुक्त हो जाता है। फिर जब न उसके पास पुण्य है, पुण्य के प्रभाव से उच्च लोक में जाता और वापिस आ जाता, पाप के प्रभाव से वो जो है पशु पक्षी योनि में जाता। तो जब समता में स्थित है वो पुरुष तो उसके पुण्य और पाप दोनों ही नष्ट हो जाते हैं। तो ये भगवान ने कहा है कि उससे जो है, और इसी तरह से भगवान ने ये भी कहा 9वें अध्याय के 28वें श्लोक में, जिसके समस्त कर्म भगवान के अर्पण होते हैं शुभाशुभ फलेर एवं, ऐसे संन्यास योग से युक्त चित्त वाला उसके क्या होता है शुभ और अशुभ मतलब पाप और पुण्य फल रूप कर्म बंधन से मुक्त हो जाता है और उनसे मुक्त होकर भगवान को प्राप्त हो जाता है, मतलब मुक्त हो जाता है। तो ये भगवान ने कहा समबुद्धि रूप के योग। तो इसलिए भगवान ने अर्जुन को माध्यम बनाकर हम सबको मुक्त होने का मार्ग बताया कि कर्म करते हुए किस तरह मनुष्य कर्म करते हुए भी कर्म बंधन से मुक्त होकर इस संसार के आवागमन के चक्र से मुक्त हो सकता है। हम देखते हैं कि आजकल के समय में समता का पूर्ण रूप से पालन करना थोड़ा कठिन है, लेकिन जो मनुष्य इस समता के लाभ को जानता है वो लाभ हानि सुख दुख जय पराजय अनुकूल प्रतिकूल परिस्थिति से थोड़ा कम प्रभावित होता है, मतलब प्रभावित होता है लेकिन जल्दी उस परिस्थिति से बाहर निकल जाता है, उसको एक ज्ञान है। तो प्रभाव तो इसलिए पड़ता है जो कि प्रकृति शरीर प्रकृति का पार्ट है, अपरा प्रकृति है, तो फर्क तो उस पर ही पड़ता है, लेकिन वो इनसे अंतःकरण में बहुत ज़्यादा उसके फर्क नहीं पड़ता, बाहर से व्यवहार में थोड़ा फर्क पड़ता है, लेकिन उससे बहुत जल्दी उस स्थिति से अपने आप को बाहर निकाल लेता, उसको अपने मन में सदा के लिए रखकर मानसिक तनाव जैसी बीमारियों में नहीं फंसता। वह सभी प्रतिकूल परिस्थितियों को भी अपना प्रारब्ध या ईश्वर की इच्छा समझकर भोग लेता है। वो सोचता है कि किसी अशुभ कर्म की वजह से ये प्रतिकूल परिस्थिति मेरे सामने आई है तो इसको मैं भोग के समाप्त कर लेता हूँ, तो ऐसा उसका दृष्टिकोण हो जाता, उससे ज़्यादा समय तक प्रभावित नहीं रहता। अतः हमें अपने कर्म करते हुए समबुद्धि रूप योग का सहारा लेते रहने का पूरा प्रयास करते रहना चाहिए। तीसरी बात भगवान कहते हैं कर्म करने की विधि में कि भगवान के परायण होकर कर्म करना, जो भी कर्म करें उसमें भगवान का ही आश्रय रख कर करें। जब हम अपने सभी कर्म भगवान को अर्पण बुद्धि से करेंगे तब हम भगवान का ही आश्रय रखेंगे, अर्थात भगवान के परायण होकर ही कर्म करेंगे। भगवान गीता के 9वें अध्याय के 34वें श्लोक में कहते हैं मुझ में मन वाला हो, मेरा भक्त बन, मेरा पूजन करने वाला हो, मुझको प्रणाम कर, मतलब मन मुझ में लग, ज्ञान योग, ज्ञान के द्वारा जब हमें ज्ञान हो जाता है तो हमारा मन परमात्मा में रहता है, मेरा भक्त बन भक्ति योग से कर, है ना, इस तरह तू कर्म मेरे लिए कर, कर्मयोग कर, भक्ति योग से कर या ज्ञान योग से कर, तो इस प्रकार आत्मा को मुझ में नियुक्त करके मेरे परायण होकर तू मुझको ही प्राप्त होगा। और इसी तरह से भगवान 11वें अध्याय के 55वें श्लोक में भी कहते हैं कि जो पुरुष केवल मेरे लिए ही संपूर्ण कर्तव्य कर्मों को करने वाला है, केवल मेरे लिए संपूर्ण कर्मों को करने वाला, मतलब मेरे अर्पण बुद्धि से करता, मेरे परायण है, मेरा भक्त है, आसक्ति रहित है और संपूर्ण भूत प्राणियों में बैर भाव से रहित है, वे अनन्य भक्ति युक्त पुरुष मुझको ही प्राप्त होता है। तो यहाँ भी भगवान ने कहा जो संपूर्ण कर्मों को केवल मेरे लिए करता है, मेरे लिए मेरी अर्पण बुद्धि से करता है, ऐसा व्यक्ति भी मुझको ही प्राप्त होता है। तो जिस मनुष्य की मन और बुद्धि परमात्मा के चिंतन में लगी रहती है वह मनुष्य परमात्मा अर्थात अपनी आत्मा में स्थित रहता है, इसमें कुछ भी संशय नहीं है। भगवान ने उपरोक्त श्लोक में कहा भी है कि मेरे परायण हुआ कर्मयोगी तो संपूर्ण कर्मों को सदा करता हुआ भी मेरी कृपा से सनातन अविनाशी परम पद को प्राप्त हो जाता। मतलब कर्मयोगी अगर संपूर्ण कर्मों को करता हुआ भी उस परम पद को प्राप्त हो, इसलिए अपने कर्म अपने मन से परमात्मा को अर्पण करके उन्हीं का आश्रय लेकर पूर्ण निष्काम भाव से लोक हित की दृष्टि से हमें करने चाहिए। इसका सतत अभ्यास करते रहना चाहिए। अंतःकरण में भाव ये रहना चाहिए कि हम जो है जो भी कर्म कर रहे हैं ब्रह्म अर्पण ब्रह्म को अर्पण करके, चाहे भगवान ने जैसे कहा है कि जो कर्म करता है, जो खाता है, जो दान देता है, जो तप करता है, जो भी तू करता है उसे सबको मेरे अर्पण बुद्धि से कर। तो हम अंतःकरण में भाव ये रखें कि जो भी हम कर रहे हैं भगवान को अर्पण बुद्धि से अगर करें तो उसमें हमारी आसक्ति कम हो जाती है, हमारी ममता कम हो जाती है। भगवान को अर्पण बुद्धि से करने के कारण हम उनसे कर्म बंधन में, कर्म करते हुए कर्म बंधन से मुक्त रहते हैं। चौथी बात भगवान कहते हैं कि अपने चित्त को भगवान में लगाए रखते हुए कर्म करना। हमारा मन बुद्धि चित्त और अहंकार ये हमारे अंतःकरण के भाग हैं। मन बुद्धि चित्त अहंकार अर्थात साधन है, कारण है, इन्हें अंतःकरण की वजह से करण कहते हैं। करण मतलब साधन, तो ये हमारे साधन है कर्म। मन से हम विचार आता है, बुद्धि से निर्णय लेते हैं, चिंतन करते हैं, तो इनसे हमारा मन निरंतर संकल्प विकल्प करता रहता है। बुद्धि हम उसका हम निश्चय करते हैं और चित्त द्वारा चिंतन करते हैं। इन सब के एक साथ निर्णय लेने पर ही हम उस कर्म में प्रवृत्त होते हैं। जब हम कोई कर्म करते हैं तब भी हमारा मन चंचल रहता है, एकाग्र नहीं हो पाता, संसार में घूमता रहता है। अतः भगवान कहते हैं तू चित्त को मेरे में लगाकर कर्म कर, अर्थात अपने स्वरूप में स्थित रहते हुए पूर्ण एकाग्र भाव से अपना शास्त्र विहित कर्तव्य कर्म पूर्ण निष्काम और निर्लिप्त भाव से करता रहे। निष्काम भाव से और निर्लिप्त, लिप्त मत हो, निर्लिप्त भाव से। जब हम भगवान को अर्पण बुद्धि से करते हैं तो हम उसमें लिप्त नहीं होते, ये सोचते हैं कि भगवान के दिए हुए काम को, भगवान के दिए हुए शरीर से, भगवान के दिए हुए जिससे सब लोग उत्पन्न हुए हैं उसी के लिए कर्म, कर्म ही पूजा बन जाती है। कर्म के आरंभ और अंत में ईश्वर को याद करके और उन्हीं को मन से अर्पण करते हुए अपना कर्म करें, इससे हमारी स्वार्थ बुद्धि उस कर्म में नहीं रहेगी और हम उसके फल से जो हमारे अनुकूल या प्रतिकूल हो सकता है बहुत ज़्यादा प्रभावित नहीं होंगे, क्योंकि फल तो ईश्वर का विधान है, जो ईश्वर का विधान है वो फल होगा। कर्म करने के लिए हम स्वतंत्र हैं, तो अपनी पूरी लगन से, पूरी मेहनत से, पूरी तत्परता से कर्म करें, लेकिन फल में जब हमारी आसक्ति नहीं होती, फल तो ईश्वर के विधान के हिसाब से मिलेगा ही जो भी कर्म करेंगे, तो उसमें हम ज़्यादा उससे प्रभावित नहीं होते, हो सकता अनुकूल हो या प्रतिकूल हो। तो भगवान उपरोक्त श्लोक में कहते हैं कि मुझमें चित्त वाला होकर तो मेरी कृपा से समस्त संकटों को अनायास ही पार कर जाएगा, और यदि अहंकार के कारण मेरे वचनों को नहीं सुनेगा तो नष्ट हो जाएगा, अर्थात परमार्थ से भ्रष्ट हो जाएगा। तो भगवान गीता के 12वें अध्याय के 7वें श्लोक में स्पष्ट कहते हैं कि उन मुझमें चित्त लगाने वाले प्रेमी भक्तों का मैं शीघ्र ही मृत्यु रूप संसार समुद्र से उद्धार करने वाला होता। अतः यदि हम अपना चित्त भगवान में लगाते हुए अपने कर्म करेंगे तब उन्हीं की कृपा से समस्त संकटों से भी पार हो जाए और संसार से भी हमारा उद्धार होकर इस जन्म मृत्यु के चक्कर से छुटकारा भी मिल जाएगा। इसी तरह से शुक्ल यजुर्वेद संहिता के 40वें अध्याय जो कि ईशावास उपनिषद कहलाता है उसके दूसरे मंत्र में भी ईश्वर अर्पण बुद्धि से कर्म करने के विषय में बहुत ही स्पष्ट बतलाया गया। तो उसमें कहते हैं इस जगत में शास्त्र नियत कर्मों को ईश्वर पूजार्थ करते हुए 100 वर्षों तक जीने की इच्छा करना चाहिए। मतलब शास्त्र भीत कर्मों को और ईश्वर की पूजा के लिए, जैसे भगवान ने गीता में कहा कि कर्म ही पूजा है, मुझमें अर्पण बुद्धि से कर और जिससे सब संसार की में व्याप्त हैं परमात्मा, जिससे सब व्यक्तियों की उत्पत्ति हुई है उनके हित के लिए तू कर्म कर, तो यही यहाँ कहा। इस प्रकार त्याग भाव से और परमेश्वर के लिए किए जाने वाले कर्म तुझ मनुष्य में लिप्त नहीं होंगे, इससे अन्य कोई प्रकार या मार्ग नहीं है जिससे कि मनुष्य कर्म बंधन से मुक्त हो सके। इस प्रकार से हम देखते हैं कि वेद, उपनिषद, गीता और अन्य शास्त्र भी हमें ईश्वर अर्पण बुद्धि से पूर्ण निष्काम और निर्लिप्त भाव से ईश्वर के परायण होकर कर्म करने की प्रेरणा देते हैं और उससे होने वाले लाभ और हानि के विषय में भी स्पष्ट रूप से हमें सचेत करते हैं। अतः हमें शास्त्रों में बताई गई विधि द्वारा ही अपने कर्तव्य कर्म करते हुए इस संसार सागर से ईश्वर की कृपा प्राप्त करते हुए मुक्त होने का सतत प्रयास करते रहना चाहिए। जय श्री कृष्णा, श्री कृष्ण अर्पणमस्तु। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। सर्वे भवन्तु सुखिना, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण, श्री कृष्ण अर्पणमस्तु।